तत्वार्थ सूत्र लेक्चर नंबर 1
ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूत अलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीपरमगुरवे नमः परम्पराचार्यगुरवे नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकम् भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकम् पुण्यप्रकाशकम् पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रम् श्रीमोक्षशास्त्रनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणदेवाः प्रतिगणदेवाः तेषाम् वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्रीउमा स्वामी आचार्यदेव विरचितम् श्रोतारः सावधानतया श्रुण्वन्तु मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दारयो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं प्रेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणहृदये।
देखो ये जो उमा स्वामी जी ने जो शास्त्र लिखा है वो शास्त्र ऐसा एक अद्भुत शास्त्र है कि जो श्वेतांबर अथवा दिगंबर कोई भी पंथ का जैन हो वो इनको मानता है और इसके अनुसार इसके पढ़ाई भी बहुत होती है। आज के तारीख में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जब तक वो पूरा ये जो तत्वार सूत्र है उसका पूरा पाठ नहीं करते हैं तब तक पानी की बूंद भी नहीं पीते, ऐसे भी आज के तारीख में लोग हैं। मूल बात तो ये है कि कुंदकुंदा आचार्य के ये पट्ट शिष्य थे और विक्रम संवत के दूसरे सदी में हुए थे, यानी हम जानते हैं कि कुंदकुंदा आचार्य भगवान महावीर के बाद तकरीबन 500-600 साल के बीच में कहीं हुए थे और ये इनके पट्ट शिष्य थे। वो उनके आचार्य पद के बाद इनके आचार्य पद मिला था, ये बात हम देखते हैं। और उसके पहले क्या क्या अवस्था थी वो मैं आपको जरा, मेरे पास एक अर्थ प्रकाशिका नामक एक शास्त्र है उसमें वो पंडित सदासुख दास जी ने
टीका लिखी,
इसके ऊपर टीका लिखी है
तत्वार सूत्र की टीका, इसका नाम है अर्थ प्रकाशिका।
वैसे देखा जाए तो तत्वार सूत्र के ऊपर अनेक टीकाएं रची गई हैं, यहां तक कि पंडित टोडरमल जी ने भी उसके ऊपर एक टीका लिखी है। ऐसा कहते हैं कि करीबन 22 टीकाएं तत्वार सूत्र के ऊपर उनके बाद लिखी है। आप कहते हैं कि वो एक अपने पास रेफरेंस बुक है ना, ज्ञान को सिद्धांत को, उसमें लिखा है 22 और सबकी लिस्ट दी। तो यहाँ तो ऐसे है कि उनके बाद के जो कोई आचार्य हुए, जैसे पूज्यपाद आचार्य थे, अकलंक देव थे, विद्यानंदी उस जमाने के, इन्होंने भी इनके ऊपर एक सर्वार्थ सिद्धि जो पूज्यपाद जी का है, फिर राजवार्तिक
आचार्य ने भी तत्वार सार लिखा। हाँ,
इस तरह से अनेक आचार्य ने इनकी बहुत सराहना की है।
आचार्य समन भद्र ने तो गंधस्थी महाभाषा लिखा है जो उपलब्ध नहीं है।
और इसके ऊपर ये समन्त भद्र जो अपना क्या नाम है सॉरी पंडित सदासुखदास जी ने इसके ऊपर एक अर्थ प्रकाशिका नामक टीका रची है तो ओरिजिनल ढूंढारी भाषा में, लेकिन हम उसका सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा क्या कहते हैं बस दो पन्ने की है, पढ़ लेते, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ कहते हैं दशाध्याय रूप तत्वार्थ की आदि विषय आप्त का लक्षण पूर्वक आप्त को वंदना करें है। ये जो तत्वार्थ सूत्र है उस तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय है और उस 10 अध्याय किसके विषय में है कि आप्त का लक्षण पूर्वक, आप्त यानी जो जैन तीर्थंकर कहो या जैन अरहंत कहो, इनके लक्षण पूर्वक आप्त को वंदना करे है। तो अभी तो हमने ये
उन्होंने स्वयं लिखा है कुछ
कल
महावीर के बाद जो परंपरा हुई
है वही बात बताओ। देखो यहाँ मंगलाचरण वो जो हमने अभी जो कहा था मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम, यानी हम ये आप तो कैसे हैं कि मोक्ष मार्ग के नेता हैं और उन्होंने क्या किया है, अपनी भाषा में कहो तो चकनाचूर कर वेतारम यानी बस चूर चूर कर दिया है, काहे का चूर चूर हुआ है तो कर्म भूभृताम, ये कर्म भी कैसे हैं, वो तो पर्वत रूप है यानी इतने अगाध इतने बहुत बड़े महान कर्म जो है जो पर्वत को जैसा पर्वत का भेद हो जाता है, पर्वत दिखता ही नहीं कहा था, ऐसे ये कर्म जो है वो कर्मों का जिन्होंने नाश किया है
पर्वत हाँ। कर्म रूपी पर्वत
और ज्ञातारम विश्व तत्वानम यानी सर्व विश्व तत्वों को वो जानते हैं, ऐसे आप्त को यानी ऐसे अरहंत को ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं वंदे, किस लिए कर रहे साहब, तो कह रहे हैं कि तदगुण लब्धे यानी उनके गुण मुझे प्राप्त हो, तो क्या उनके गुण अपने स्वचतुष्टय में आ सकते हैं हाँ? यहाँ तो कह रहे भैया गुण तो कुछ नहीं आने हैं, लेकिन जब जब हम जिनेन्द्र भगवान के सामने जाकर नतमस्तक होते हैं तो वो इसलिए होते हैं कि उनके गुण उनकी जो पर्याय हैं वो गुण रूप बनी है, एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं स्वरूप रूप बनी है, स्वभाव रूप परिणमित हो रही है, ऐसे मेरे भी परिणति हो जाए, तो इसका अर्थ है कि वंदे तदगुण लब्ध यानी देखो भैया ऐसा हमने देखा है कि कोई बहुत बड़ा अमीर सेठ होगा उसके घर में नौकर भी होते हैं और नौकर के बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे तो बहुत वो जो नौकर के बच्चे होते हैं उनको तो खाने पीने की लाले पड़े हैं, वो तो पढ़ाई में तो एकदम तेज होते हैं, और जो सेठ का बच्चा होता है वो तो क्या है तो बाप उसको बोलता है देख देख उसके थोड़े गुण ले, तो गुण ले का अर्थ क्या है उसका कुछ सीख तू यानी सीख यानी तेरी पर्याय में भी ऐसी अवस्था तू तैयार कर। तो यहां पर भी ये मंगलाचरण में यही बात बता रहे हैं हे भगवान हम आपके गुण स्वयं हम भी प्राप्त करें यानी आपकी पर्याय जैसी बनी है वैसी हम भी प्राप्त करें इसलिए हम आपको वंदन कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ तीन विशेषणी सहित आप्त की स्तुति रूप मंगलाचरण किया, यहाँ कह रहे कि तीन विशेष के सहित यानी उनके विशेषण बताए आप्त यानी यहाँ दिग्गज तीर्थंकर की अपेक्षा से इनको आप्त कह रहे हैं। कहाँ मोक्ष मार्ग का नेतृत्व विशेष पनय तो आप्त का जगत के प्राणिनी प्रति परम हितोपदेश पना करी अद्वितीय उपकार प्रतिपादन रूप वर्णन किया, क्या कह रहे हैं ये मोक्ष मार्ग की बात बताकर प्राणी मात्र को उपदेश दिया वो हितकारी उपदेश है हा? परम हितकारक है इसलिए कहते हैं वो अद्वितीय उपकार उन्होंने किया है। अर कर्मभू भृत भेतृत्व विशेषण करी आप तके सर्वोत्कृष्ट सामर्थ्यपना व निर्दोषपना तथा वीतरागपना प्रकट किया, क्या कहना चाहते हैं ये जब वितरागता हो जाती है तब क्या कह रहे हैं कि उनके बिल्कुल कर्मों का भेदने का जो कोई बल है उसकी भी बात बता रहे हैं और कहते हैं उत्कृष्ट सामर्थ्य भी बता रहे हैं और साथ साथ में उनका निर्दोषपना। ये निर्दोषपना क्या होता है भाई? भगवान निर्दोष है ऐसा कहते हैं। हाँ, कौन से दोष? कितने? 28। आप कितना बोलते हैं? 28। अरे अरे अरे, जास्ती सस्पेंस नहीं रखते हैं। 18 दोष रहे। अच्छा, 18 दोष में से कम 2-3 दोष तो आपको बता के 18 का 18 बताएंगे, 2-3 बताएंगे। अच्छा, हाँ बोलो बोलो। हाँ, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपने 18 के 18 नाम याद है। तो ये जो है ना, ये परसों बात निकली थी ना अपने समय सार नाटक में, तो ये जो दोष रहित है ये कब होते हैं कि जब अंतरंग में वितरागता पैदा होती है। इसलिए कह रहे हैं कि ये तीन जो विशेषण बताए ना, तो इसमें वितरागपना भी प्रकट किया। जाते इंद्रादिक समस्त देव जाकू जीते नहीं सके, यानी ये जो वितरागता इतनी आउटस्टैंडिंग है कि इंद्र भी उनको जीत नहीं पाए, ऐसा कहते हैं। ये तो आपको कथा शायद मालूम होगी, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद आई इसलिए बताता हूँ। जब यहाँ सिकंदर आया था, ये मुगल बादशाह का जो कोई होगा, ग्रीक का था वो, तो उसने एक मुनि को देखा। वो मुनि को देखकर उनके ऊपर इतना मोहित हुआ कि उनको बोला कि तुम हमारे साथ चलो। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा। मुनिराज ने कहा मैं नहीं आऊंगा। तो उनके ऊपर बहुत सारा ये किया, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ जाने के, क्योंकि उनके तत्व उनका आचरण ये देख के वो भी मोहित हुआ। तो यहां तो कहते हैं कि इंद्र भी इनको जीत नहीं पाए, कैसे पाएंगे? वो तो वितरागी है, किसी अन्य बातों परिश्रम से कोई थोड़ी डरने वाले हैं। किसी
मुनि का वर्णन चल रहा
है। हाँ,
इंद्र भी जिसको जीत नहीं पाए ऐसा मुनि का।
अच्छा, इंद्रादिक समस्त देव
आगे का
जाकू जीते नहीं सके और जगत के समस्त जीवनी को जीती, स्वरूप ते भ्रष्ट करी, जड़ रूप करी, नष्ट किया ऐसा मुनि कर्म।
ये मुनि कर्म कितना बलाढ्य है वो पहले बता रहे कि देव जो इंद्रादिक है उन्होंने भी मुनि कर्म को विजय नहीं पाया। और ये मुनि कर्म ने क्या किया है? जगत के सभी जीवों को स्वरूप से भ्रष्ट कर दिया
और जड़ रूप,
जड़ रूप किया है ने क्या? अचेतन है। जड़ रूप ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, जड़ रूप है तो ज्ञान वाले मगर विवेक रहित कर दिया और नष्ट कर दिया, ऐसा जो मुनि कर्म है। और ऐसे अन्य जो तीन कर्म है ना,
ज्ञान और निदर्शन और अंतराय,
ऐसे मिलकर चार कर्म हुए, चार राति कर्म,
इनका नाश करी।
तो इनका नाश किया कर्म भूभृतम, यानी ये अरियंत का वर्णन चल रहा है। उन्होंने कर्म के भूभृत यानी चार राति कर्मों का नाश किया, उसकी ये बात चल रही है। ये अभी हमने जो ऊपर श्लोक पढ़ा ना, उसमें से एक एक शब्द लेकर उसका वर्णन चल रहा है। तो ये तो हो गया, पहला कौन सा बताया उन्होंने?
हितोपदेशिपना,
परम हितोपदेशिपना। दूसरा बताया सर्वोत्कृष्ट सामर्थ्य बना। तीसरा बताया वितरागता। और अभी हम सर्वज्ञता की बात करें, ज्ञातारम विश्व तत्वाना, यानी विश्व तत्व ज्ञातृत्व विशेषण बना दिया, विश्व के सभी तत्वों को जानने वाले, मैंने सर्व गुण पर्याय सहित पदार्थों को क्रम रहित युगपत जानने के कारण इनका सर्वज्ञपना है, वितरागपना को करते हैं। इस तरह से उनके ये सारे वर्णन, ये दो ही लाइन में सबको वर्णन कर दिया उन्होंने। तो आप तो किसको कहना, तो सर्वज्ञ, वितराग और परम हितोपदेशक, ये जो तीन विशेषण है वे जिनके पाए जाते हैं उनको आप तो कहते हैं। देखो, सिद्ध है वो भगवान है, देव है हमारे, परंतु उनको आप तो नहीं कहते, आप तो उन्हीं को कहते हैं जो सर्वज्ञ वितरागता के साथ तो अकेला हित उपदेश भी नहीं कहते, क्योंकि हम कहीं हमारी माँ भी हमारा हित का उपदेश देती, वो उसकी बात नहीं है। मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले जो अरिहंत भगवान है उनको ये आप तक कहते हैं, उन्हें भी उपदेश देते हैं, उनको आप तक नहीं कहते। आप तो कैसे होते हैं सर्वज्ञ वितराग और परम उपदेश। तो कहते हैं कि वे ही शास्त्र की उत्पत्ति के, ये शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है, जो इसको कहीं तीर्थ उपदेश जो है उसके मूल कर्ता कौन है, तो सर्वज्ञ भगवान आप तक। तो ये शास्त्र की उत्पत्ति के आदर्श रूप निमित्त कारण और शास्त्र का यथार्थ ज्ञान और अपने समान भोवे जीवों को सर्वज्ञ वितराग बनने का निर्बाध निमित्त कारण। कोई भी महान व्यक्ति हो परंतु उसके जैसे बनने का उद्देश्य नहीं करेंगे। तो ये तो ऐसा है कि कोई बिल्कुल नो ट्रेड सीक्रेट, सब ओपन करके भव्य जीवों को उपदेश देते हैं कि उनके समान हो जाए, इस तरह से उन्होंने उपदेश दिया है। इसलिए आप तो उनको मंगल रूप करके मंगल किया। मैं ये है तो ढूंढारी भाषा उनकी उस समान में, तो हिंदी करके आपको बता रही हूँ। अभी यहाँ कुछ अल्प विशेष लिखते हैं, ये आगे तो बता नहीं,
नहीं? ये अभी जो आपको बताया कि आप तो किसको कहना, इसी बात के आगे चर्चा विशेष रूप से है। तो यहाँ बता रहे हैं सिद्ध भगवान वितराग सर्वज्ञ तो है परंतु चिंते उपदेश संभव ही नहीं, क्योंकि सिद्धों से तो उपदेश होता नहीं है। या तई ते परम हितोपदेश आप्त नहीं कहे गए हैं, ताते आप्तपना अरहंत जिने देव को ही बने हैं। और ये भी बात हम ध्यान में रखते हैं, सभी अरहंत होते हैं तो सभी उपदेश नहीं देते, उनमें से जो परम हितोपदेश जो बात बताई है वह तो तीर्थंकर की अपेक्षा से, और इसीलिए तीर्थंकरों को भी तीर्थंकरों को ही आप्त कहा जाता है। वैसे अन्य अरहंत होते हैं जो केवली होने के नाते उनके भी गंधकुटी बनती है, वो भी उपदेश देते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा से यहाँ बात नहीं की है। अभी कह रहे हैं इस श्लोक में आप तक को नमस्कार करने तय तथा मोक्ष और मोक्ष का मार्ग समर्थन तय प्रथम तो नास्तिकवादी या शून्यवादी नी का परिहार है। यानी इन्होंने यही बताया कि मोक्ष मार्ग क्या है, ये तो अभी आगे जाके बात आएगी कि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यहाँ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही मोक्ष का मार्ग है, ये तो अस्ति का कथन किया, लेकिन उससे अन्य लोगों का जो कोई मत है उसका भी यहाँ खंडन हुआ। ये सूत्रों की तो ऐसी महानता है, विशिष्टता है कि उसमें तो मिनिमम अक्षरों में मैक्सिमम मैटर बताते हैं। तो यहाँ तो छोटा छोटा सूत्र, वहां तो यहाँ तक अभी हम राजवार्ती के श्लोकवार्ती वगैरह आदि जो देखते हैं उसमें तो ये च शब्द नहीं चाहिए, इसके ऊपर बहस चला है कि कोई कहता है चाहिए और कोई कहता है नहीं चाहिए। ऑब्जेक्शन लेने वाले ही कहेगा नहीं चाहिए, फिर वो क्यों आवश्यक है ये भी बात बताते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अन्य यानी नास्तिकवादी या शून्यवादी का परिहार करते हैं, जाते सर्वज्ञ और जीवादिक समस्त पदार्थनी का सद्भाव नास्तिकवादी और शून्यवादी ना ही माने हैं, यानी वो इनको मानते नहीं, भगवान को ही नहीं मानते हैं। बहुरी मोक्ष तत्व कहने तई जो चारवाक मत वाले परलोक तथा जीव तथा मोक्ष का अभाव माने हैं तिन्हीं का परिहार भया। यानी अन्य मान्यताओं का जो कुछ है सबको, अभी अपने को तो अन्य के नाम तक मालूम नहीं तो उनकी मान्यताएं कहाँ क्या मालूम, लेकिन एक बात नक्की करना कि उसका उन्होंने वहां ये कर दिया, क्या है, खंडन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट,
ईश्वर संबंधी जो अन्य अन्य मिथ्या मान्यताएं है या ईश्वर का सही स्वरूप बताकर अन्य मान्यताओं का निराकरण। अन्य मान्यता तो बहुत अलग अलग टाइप की बहुत सारी है, तो हमारा चेतन का उसी बोले सबका यहाँ रूल आउट कर दिया, उसको सबका निराकरण। इसको कहते अपने मत का मंडन करना, प्रर मत का खंडन करना। गाथा या कोई भी शास्त्र पढ़ने की जो अलग अलग अर्थ है, जैसे हम उसका शब्द को अर्थ कहेंगे तो हम कहेंगे ये अर्थ हुआ, परंतु इसको कहते मतार्थ, अपना मत प्रस्तुत करना और उसी कथन से जो देव को नहीं मानते हैं, जो देव का विपरीत स्वरूप मानते हैं, जो देव को मानना भी 18 दोष रहित होता है, उसमें जन्म नहीं होता कहेंगे, अन्य मत मानते हैं वो अवतार धारण करेंगे, तो इस इन सभी मतों का खंडन होगा।
देखो यहाँ पर मैं जरा फास्ट पढ़ूंगा, नहीं समझ में आवे तो रोकना, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन यही पढ़ते रहूंगा तो अपना मूल विषय दूर दूर चला जाएगा, लेकिन ये भी पढ़ने के मतलब बहुत ही अच्छा है, जो पढ़ना चाहिए। देखो अथ देवादि देव परम पूज्य धर्म तीर्थ के प्रवर्तन करने वाले अनंत चतुष्टयादि अनंत गुण रूप अंतरंग विभूति करी भूषित और इंद्रादिक देव परम भक्ति करी निर्मापण किया जो अनुपम विभूति करी भूषित। ये तो उनके वर्णन, जो भगवान का वर्णन कर रहे हैं, तो ऐसा करते करते आगे बढ़ता हूं मैं। अष्टादश दोष रहित जीवनी का परम उपकार करने वाला और लोकालोक का प्रकाश करने वाला और त्रिकालवर्ती अनंत द्रव्य अनंत गुण अनंत पर्यायनी का युगपत क्रम रहित एक काल में उद्योत करने वाला, उद्योत यानी जानने वाला, और अनंत महिमा युक्त अनंत शक्ति सहित और संसार समुद्र में डूबते अनेक प्राणिनी को हस्तावलंबन देने वाला, हस्तावलंबन यानी उनको उनका उद्धार करने वाला, और परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर परमेष्टी स्वयंभू शिव अरिहंत आदि नाम करी विख्यात और अशरण प्राणिनी को अद्वितीय शरण और परम अवतारिक देह में तिष्ठता और सप्तऋषि समृद्धि सप्तरुद्धि गौतम समृद्ध सप्तरुद्धि समृद्ध गौतम आदि गणधर मुनि के सेवनीय है चरणारविंद जाका, यानी उनके पैर कैसे हैं कि जो गौतम भी जो कौन से हैं सप्तरुद्धि से युक्त है, वे भी जिनके पैर छूते हैं ऐसे। और अभी यहां से बहुत इंटरेस्टिंग है, कंठ ओष्ठ तालु जिह्वादिक, कंठ यानी ये ओष्ठ यानी और तालु यानी जो अंदर है वो और जिह्वा यानी जीभ आदि अंगोपांगनिका कंपन स्पर्शन रहित उपजा और समस्त प्राणिनी के पुण्य प्रभाव करी प्रेरित आर्य अनार्य समस्त देशनी के प्राणिनी के ग्रहण में आवता समस्त पाप का घातक ऐसा दिव्य ध्वनि करी भव्य जीवनी का मोह अंधकार दूरी करता,
यानी उनके मुंह से नहीं बोलते हैं, उनकी जीवा नहीं दूसरे हालचाल भी नहीं होती है और कंठ से आप कहते मुंह खोले बिना भी बोलने की कला है ना, वो आता है
ना,
तो कहते ऐसा भी नहीं, वोकल कॉर्ड से भी कुछ नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई कंपन नहीं है, फिर भी सर्वांग से ध्वनि निकलती, उसकी बात अभी आगे चलती।
ये तो दिव्य ध्वनि की बात करो, अब कहते हैं यह तो बताए कि आर्य और अनार्य सबको समझे ऐसी बात है,
अपनी अपनी भाषा में सभी समझ लेते हैं।
वैसे तो हम पूजन में भी पढ़ते हैं कि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, ये अपनी अपनी भाषा में ऐसे लोग प्राणी पीरियंज सब जानते हैं। अब क्या कह रहे हैं, भव्य जीवनी का मोह अंधकार दूरी करता और 64 चामर निकरी विराजमान, यानी उनके ऊपर 64 चावर ढूंढते हैं,
देव 64 चावर से वो
अष्ट प्रातिहारी विभूषित, अभी 8 प्रातिहारी वगैरह क्या है उसको अभी हम उसको निग्लेक्ट करते हैं, सिंहासनतई 4 अंगुल आंतरिक विराजमान भगवान, यानी सिंहासन पर बैठते नहीं वो उससे अंदर रहते हैं, सकल पूज्य परम भट्टारक श्री वर्धमान देवाधिदेव मोक्ष मार्ग के प्रकाशनी के अर्थी समस्त पदार्थनी का स्वरूप सातिशय दिव्य ध्वनि करी प्रकट किया, इस अवसर में निकटवर्ती निर्ग्रंथ ऋषिश्वर समस्त मुनि गण करी वंदनिक सप्त रुद्धि करी समृद्ध चार ज्ञान के धारक श्री गौतम नाम गणधर देव भगवान भाषित अर्थ को धारण करी द्वादशांग श्रुत रूप रचना करी। अभी ये कहाँ से बात निकली?
भगवान की जो वाणी फिरी तो गौतम गणधर ने उसके द्वादशांग रूप 12 अंगों की रचना की।
अभी इससे आगे देखो क्या कह रहे हैं। बहुरी श्री वर्धमान स्वामी को मुक्ति गए पीछे। अभी भगवान महावीर का तो निर्वाण हुआ, उसके बाद में क्या क्या हुआ? गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बूद्वीप, ये जम्बू स्वामी, ये तीन केवली 62 वर्ष पर्यंत पदार्थनी की प्ररूपना करे। यानी ये केवली हुए ये तीन जन, और वो मोक्ष गए थे। वो तो पहले चौथे काल में जन्मे थे ना? फिर भी बाद में पंचम काल में गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है? एक तो गौतम स्वामी यानी स्वयं गणधर, दूसरे सुधर्माचार्य नाम है वो एक आचार्य, और जम्बू स्वामी, ये तीनों केवली बने और 62 वर्ष पर्यंत सारे वस्तु स्वरूप का प्रारूपण उन्होंने किया। बहुरी तिनके पीछे अनुक्रम करी विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु, ये 5 श्रुत केवली द्वादशांग के पारगामी भय। ये क्यों हमें पढ़ना है कि कौन कब तक कहां तक क्या क्या जानता था और आज अपनी हालत क्या हुई है, ये मैं बताना चाहता हूं। तिनका 100 वर्ष पर्यंत अवसर भया, यानी उसके बाद 100 साल तक वे द्वादशांग के ज्ञानी थे। इस अवसर में भगवान केवली तुल्य समस्त पदार्थिनी का प्ररूपण भया, क्योंकि वही भी शुद्ध केवली थे। बहुरी विशाखाचार्य, ये नाम केवल सुनना हो, आप चाहो नंबर गिनना, विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रिय, जयसेन, नामसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिमान, गंगदेव, धर्मसेन, ये 11 हो गए। ये दश पूर्व के धारक एकादश परम निर्ग्रंथ मुनि अनुक्रम तय 143 वर्ष में भय। यानी ये भी कहते थे कि ये
11 और 10 पूर्व,
हाँ 10 पूर्व के धारक थे। अब आगे कहते हैं ते यथार्थ पदार्थ देने को सम्यक प्ररूपण करी। यानी यहां तक तो बिल्कुल आगम के अनुसार तो डेफिनेटली बात चलती थी। बहुरी नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन, कंसाचार्य, 5 महामुनि एकादशांग विद्या का पारगामी अनुक्रम ते 220 वर्ष पर्यंत यथावत प्ररूपना करी। बहुरी सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु, महायश और लोहाचार्य, ये 5 महामुनि एक प्रथम अंग का पारगामी 118 वर्ष में भय। देखो यानी 100 साल के अंदर ही कितनी ज्ञान की मतलब हीनता शुरू हुई। ये वो सिर्फ एक अंग के ज्ञाता थे, इसमें कौन आ गए? भद्रबाहु। ऐसे काल के निमित्त ते बुद्धि वीर्यादिकनी की मंदता होते श्री कुंद कुंदाधिक अनेक परम निर्ग्रंथ वितरागी अंग के वस्तु निका। यानी अंग में भी वस्तु नाम हमने देखा ना, कि श्रुत ज्ञान के भेद तो उसमें वस्तु नाम का था, वो वस्तु का ज्ञानी होते भये तथा उमा स्वामी भये। यानी ये भद्रबाहु दर्शन आचार्य वगैरह जब हुए तब उन्हें पता लगा कि अभी ये भद्रबाहु तो उस समय, फिर कुछ लोग इधर गए, नॉर्थ में गए, कोई साउथ में गए, वो वाले। और जब से ये श्वेताम्बर मठ चालू हुआ, भद्रबाहु ने कहा कि अभी वो तो जानते थे ना, उन्होंने कहा 12 साल तक अभी यहाँ अकाल होने वाला है, दुकाल आएगा, तो हम लोग नीचे साउथ में जाते हैं। तो बहुत सारे तो लोग गए और कुछ लोग रुक गए, लोग यानी मुनि। फिर वहीं से वहां से फिर बहुत सारी वो तो शिथिलाचार चालू हो गया वगैरह वगैरह, और ये श्वेताम्बर मठ की स्थापना हुई। 12 साल के बाद वे आए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने जो कुछ किया है वो बात छोड़ दो, अब फिर से इसमें शामिल हो जाओ, तो उनको तो ऐसा रहा ना कि अभी मौज मजा रहने लगी तो फिर ये तो थोड़ा सा मार्ग उनको कठिन लगने लगा, उन्होंने खुद का चालू किया। आज मैंने बताया ना, वो भाई साहब आए थे बाहर गांव से, वो बता रहे थे कि मरण के बाद, मरण निर्वाण के बाद ये नाक में बीच में हॉलोनेस है, पेट के अंदर हॉलोनेस है,
अपने में मत है सर, कम होता है सर, ऊपर का खाली दो मत है क्या अच्छा साइज है
उन्होंने ये कहा कि आपने जो अभी बताया है उनके साइज 1/3 कम हो जाती है, उनका कहना है कि साइज कम हो जाती है और आपका कहना है कि वो वॉल्यूम कम हो जाता है उनका। हाँ जी,
वही देह प्रमाण ही रहेगा, केवल वो आत्म प्रवेश बन जाएगी,
तो वो ऐसा कह रहे थे कि वो हम तो ऐसा सुनते हैं क्या करें। मैंने कहा मत सुनना, दूसरा क्या। उनका कहना है 5 फुट की हाइट, 6 फुट की हाइट है तो 4 फुट के हो जाते, 1/3 कम हो जाते। हमने कहा ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, नहीं ऐसे ये लोग मानते हैं। मैंने कहा ठीक है, अभी कौन क्या माने तो उसको क्या करें, लेकिन ये वॉल्यूम कम होता है ये बात मुझे भी मालूम नहीं है। यानी ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा समय आया था कि जिस समय लोगों का ज्ञान में हीनता आदि हो गई, वीर की हीनता भी बताई। अब आगे ऐसे पाप से भयभीत ज्ञान विज्ञान संपन्न परम संयम गुणधारी मंडित गुरुनी की परिपाटी तय श्रुत का अविच्छिन्न अर्थ के धारक इस कलिकाल में श्रुत केवली तुल्य श्री उमा स्वामी नामा परम वीतरागी मुनि भव्य जीवनी के परम उपकार करने को भगवान की परगाम की आज्ञा तय परमागम की आज्ञा तय तत्वार सूत्र 10 अध्याय रूप रचना करी। अभी कहते बहुरी काल के निमित्त थे जीवनी की बुद्धि की मंदता जानी मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन के अर्थी श्री पूज्यपाद स्वामी तत्वार सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि नामा टीका रची और श्री समंत भद्र स्वामी 84,000 श्लोक प्रमाण गंधस्थी नामा बड़ी टीका रची जो आज के तारीख में उपलब्ध नहीं है तथा श्री अकलंक देव तत्वार्थ वार्तिक कलंकार ताकू राजवार्तिक कहिए हैं ऐसी 16,000 श्लोकनी की टीका रची भौरी श्री विद्यानंदी स्वामी श्लोक वार्तिक नामा 20,000 श्लोकनी की टीका रची। सो अब इस कलिकाल में ऐसे संस्कृत ग्रंथ पढ़ने समझने वाले अति अल्प रही गए ताते मंद ज्ञानी जीवनी के मोक्ष मार्ग रूप शास्त्र का किंचित अर्थ समझने को देश भाषा में वचनिका लिखी है। यानी इन्होंने ये पंडित सुखदास सदा सुखदास जी। अब हम
माने इसके पहले ये ग्रंथ जो है वो संस्कृत में और उसके पहले ये सब ग्रंथ संस्कृत में नहीं।
देखो 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 अभी ये जो इसके सारे जो सूत्र हैं वो सूत्र तो संस्कृत में, इसके ऊपर जो टीकाएं रची गई
वो संस्कृत तो कितनी संस्कृत में भी थी राजवार्तिक श्लोकवार्तिक वो संस्कृत में,
उसमें जो कुछ पद्यात्मक है और कुछ गद्यम है, संस्कृत और पद्य में तो कौन समझे, लेकिन फिर उसका ट्रांसलेशन हुआ आज के तारीख में बहुत कुछ है।
लेकिन पहले तो प्राकृत नहीं था,
कौन सा ये प्राकृत नहीं है, संस्कृत
संस्कृत कुंदाचार्य ने प्राकृत,
कुंद आचार्य के जमाने में प्राकृत रेगुलर भाषा थी, वो लोगों को डिफिकल्ट लगने लगी, संस्कृत विशेष रूप से प्रचलित रहा तो उन्होंने संस्कृत में रचना करी। अब संस्कृत भी लोगों को डिफिकल्ट लगने लगा तो हिंदी में करी, हिंदी भी डिफिकल्ट लगने लगा तो गुजराती में करी, गुजराती मराठी में करी। अभी क्या है, जैसा जिसका जो हाँ मतलब लैंग्वेज जो चली और लोगों को समझे। हाँ
इंग्लिश में भी किया।
अभी क्या है जो है सो
भगवान के जमाने में इतनी भाषा में हुआ तो आज हुआ उसमें क्या।
हाँ अभी यहाँ से मूल ग्रंथ को शुरू करते हैं हम। आपके पास है ना, सबके पास श्री सर्वज्ञ वीतरागाय नमः ओम श्रीमद आचार्य उमा स्वामी विरचित मोक्ष शास्त्र गुजराती टीका का हिंदी अनुवाद। ये भी हिंदी अनुवाद हुआ है। ये मंगलाचरण तो हमने पढ़ लिया है, फिर भी दोबारा पढ़ेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धये। अर्थ भी पढ़ लिया है फिर भी देखते हैं। मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक, प्रवर्तक यानी नेता, नेता यानी लीडर, उन्होंने प्रवर्तक यानी वो ये बताया कि उन्होंने मोक्ष मार्ग बताया
चलाया।
कर्म रूपी पर्वतों के भेदक अर्थात नष्ट करने वाले तथा विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले आप्त को उनके गुणों की प्राप्ति के हेतु मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। अभी संक्षिप्त अवलोकन। इस शास्त्र को प्रारंभ करने से पूर्व संक्षेप में यह बताना आवश्यक है कि इस शास्त्र का विषय क्या है। आचार्य देव ने ये जो पहले जो शुरुआत किए ना, ये तो अभी ये जो दोषी साहब है रामजी भाई दोषी, उन्होंने ये पहली बात लिखी है इंट्रोडक्टरी, क्योंकि उन्होंने भी एक टीका करा है ना वही इसमें। आचार्य देव ने इस शास्त्र का नाम मोक्ष शास्त्र अर्थात तत्वार सूत्र रखा है। जगत के जीव अनंत प्रकार के दुख भोग रहे हैं और उन दुखों से सदा के लिए मुक्त होने अर्थात अविनाशी सुख प्राप्त करने के लिए रात दिन उपाय कर रहे हैं, किंतु उनके वे उपाय मिथ्या होने से जीवों का दुख दूर नहीं होता, एक या दूसरे रूप से दुख बना ही रहता है। ये तो अभी हम बहुत बड़ा अभ्यास हुआ है तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन से दुख है, क्या दुख है वगैरह वगैरह। जीव दुखों की परंपरा से क्यों कर मुक्त हो, क्यों कर यानी क्या करने से मुक्त हो, इसका उपाय और उसका वीतरागी विज्ञान इस शास्त्र में बताया गया है, इसलिए इसका नाम मोक्ष शास्त्र रखा गया है। ये मोक्ष शास्त्र नाम रामजी भाई जोशी। मूल भूत भूल के बिना दुख नहीं होता और उस भूल के दूर होने पर सुख हुए बिना नहीं रह सकता, यह अबाधित सिद्धांत है। क्या कहना चाहते हैं कि ये जीव क्यों दुखी है, ये भूल कर रहा है, क्या भूल है उसकी बात नहीं है, तो कह रहे हैं कि भूल दुख दूर हो जावे तो वह जीव सुखी हो जाएगा। पहले में पहले तो ये कहा कि भूल किए बिना दुखी नहीं होता, तो क्या भूल होनी चाहिए अमोल या बता पाएंगे कि ये जीव दुखी है, क्या भूल है उसकी किसके लिए वो दुखी हो रहा है। हाँ बहुत अच्छा, आपका कहना है तो पर में मन लगा है इसलिए वह दुखी है, लेकिन वो फिर भूल क्या की उसने, ये तो आपने बहुत अच्छा, ये मूल बात है कि अपने स्वयं को उसने नहीं जाना और पर में ही अपनत्व माना, पर पदार्थों में ही वो, क्योंकि पांच इंद्रियों के बाह्य पदार्थ ही दिखाई देते हैं और वो ऐसा समझता है कि ये जो देखना जानना जो हो रहा है मेरी इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, यानी अपने को नहीं जाना और मैं ज्ञान में स्वरूप हूँ, ज्ञान को जानने में अन्य किसी मदद की आवश्यकता नहीं, ज्ञान तो जाने 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 जाने, ऐसा ज्ञान का चानना निरंतर चल रहा है पर के कारण नहीं। देखो इसको हम इन शॉर्ट देखना चाहेंगे, ये जानना 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 रूप जो कार्य हो रहा है ये किस कारण से चल रहा है दिव्य बहन, सतत काम जानना जानना चल रहा है, जानने की उत्सुकता इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अरविंद भाई आप बताएंगे।
हाँ
हो रही है, क्यों हो रही है, हाँ मेरा फिर से समझना, जानना 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 निरंतर चल रहा है, हाँ अस्तित्व, आप क्या कह रहे हैं, द्रव्यत्व गुण के कारण जानना उसका स्वभाव है, सब स्वभाव है, लेकिन वो निरंतर क्यों जान रहा है, जानन रूप कार्य जो परिणति है निरंतर क्यों चल रही है, क्या अरे वैसी व्यवस्था ही है, तुम नहीं जानना चाहो तब भी वो रुकने वाला नहीं, जानना तो चलेगा ही, लेकिन किसको जानना इसमें जरा गड़बड़ होती है। वास्तविक ऐसे एक एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्वभाव है कि भाई तुझे तो तुझे ही जानना है लेकिन ज्ञान जो है वो स्व पर प्रकाशित है, तो फिर पर को जानना के नहीं, अरे पर को लीन होके मत जानना, तू स्व को बराबर परफेक्टली जानेगा तो पर तो जानने में आने वाला ही है। अब लोग ऐसा मानते कि सामने पदार्थ है तो ही मुझे ज्ञान होगा, तो कहते विश्व में अनेक अनंत पदार्थ है कि नहीं, तो तू भी सर्वज्ञ होना चाहिए, अगर पर से ज्ञान होता है तो ख्याल में है ना, यानी ये ऐसे एक एक सिद्धांत हैं, तो वो जैसा झिकझक पजल आता है ना वो हर जगह बराबर ऐसे ऐसा बिठाएंगे तो एक पिक्चर तैयार होता है, वैसा हम ये सिद्धांतों को सही रूप से नहीं घटित कर रहे हैं तो हमें वस्तु स्वरूप का बराबर ज्ञान नहीं हो रहा। अभी यहाँ जो बात चल रही है ये जीव भूल क्या कर रहा है, तो कहते अपने को नहीं जाना, तो फिर जान तो रहा है ना, हाँ जान रहे, क्या जान रहे, पर को जान रहे, कैसा जान रहे, स्वरूप जान रहे, अपने रूप जान रहे, जो अपना नहीं वो मेरा है ऐसा जान रहा है, यहां तक कि इसकी मजाल मतलब क्या बोलते हैं मर्यादा बढ़ गई है कि उसका मैं करने वाला हूं, उसको मैं भोगने वाला हूं, यहां तक, अरे करना भोगना तेरा स्वभाव ही नहीं है, ख्याल में आया, और ये ऐसा मान रहा है। हाँ तो देखो मूलभूत भूल के बिना दुख नहीं होता, कितनी एक्सलेंट बात बताई, हाँ? और उस भूल के दूर होने पर सुख हुए बिना नहीं रहता, बोलो अभी क्या चाहिए, तुम सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी भूल सुधारना है तो सुख तो सहज रूप से चालू हो जाएगा, क्यों कि जब जब जीव सम्यक्त रूप से प्रणमन चालू करता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है तो सुख भी प्राप्त होगा, वो अतीन्द्रिय सुख होगा, इसलिए कह रहे मूलभूत भूल के बिना दुख नहीं होता और उस भूल के दूर होने पर सुख हुए बिना नहीं रहता, गारंटी दे रहे वो, और हमको तो लगता है यार ये क्या बात कर रहे हैं, ये हम इधर इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना मौज मजा कर रहे हैं और ये तुम इधर इसमें लगाओगे तो ये सारा छोड़ छाड़ के जाएगा तो किधर जाएगा, हाँ मैं तो दुखी होऊंगा, जो है उसको छोड़ने का, अगर तुम्हारा स्वाध्याय आदि आत्मा फात्मा को समझने का जरा मन नहीं करता है, लेकिन यहां तो गारंटी दे रहे हैं कि भूल दूर होते ही ये सुख जो है वो सच्चा सुख है, हाँ वो हुए बिना नहीं रहता, और आगे लिखते यह अबाधित सिद्धांत है, इसको किसी भी प्रकार से बाधा आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकेगा, वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझे बिना वह भूल दूर नहीं होती। क्या और उससे भी बढ़िया बात बताएगी कि क्या कहें, वस्तु का यथार्थ स्वरूप, अभी वस्तु यानी यहां तो द्रव्य है, द्रव्य यानी छह द्रव्यों का यथार्थ स्वरूप जानो, उसमें मैं भी हूं ना तो मेरा भी यथार्थ स्वरूप जानो, तो वह भूल दूर हो जाएगी, कहते इसलिए शास्त्र में वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझाया गया है, इसलिए इसका नाम तत्वार्थ सूत्र भी रखा गया है। यदि जीव को वस्तु के यथार्थ स्वरूप संबंधी मिथ्या मान्यता यानी रॉन्ग बिलीफ न हो तो ज्ञान में भूल न हो। क्या और क्या बताते हैं? पहली तो पहली यहाँ श्रद्धा में भूल चल रही है, मिथ्या मान्यता है, तो उसके कारण निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ज्ञान में भी भूल होती है। जहाँ मान्यता सच्ची होती है वहाँ ज्ञान सच्चा ही होता है। सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक ही यथार्थ प्रवृत्ति यानी आचरण स्वरूप में स्थिरता होती है। देखो हमने बहुत बार ये भी देखा था कि वास्तव में कई बार ऐसा लिखते हैं कि ज्ञान कभी मिथ्या रूप से परिणमता ही नहीं है, ज्ञान तो सम्यक रूप से ही परिणमित हो रहा है, लेकिन वो जानना 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 उसमें मिथ्या जानना सच्चा जानना ही नहीं, उसमें विपरीतता तीन कारणों से बताई है, वो बात अभी यहां नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसको मिथ्या क्यों कहा जा रहा है कि श्रद्धा की अपेक्षा से उसको मिथ्या कहा। तो कहते हैं सेकंड लाइन में फिर से पढ़ता हूं, जहां मान्यता यानी श्रद्धा सच्ची होती है वहां ज्ञान सच्चा ही होता है। सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक यानी हम दूसरी भाषा में कहेंगे सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही यथार्थ सम्यक चारित्र होता है, यानी यथार्थ प्रवृत्ति। प्रवृत्ति यानी ये बाह्य प्रवृत्ति की बात नहीं, स्वरूप में जो लीनता रूप जो कोई बात है उसकी बात है। इसलिए आचार्य देव ने इस शास्त्र का प्रारंभ करते हुए प्रथम अध्याय के पहले ही सूत्र में यह सिद्धांत बताया कि सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक होने वाली सच्ची प्रवृत्ति द्वारा ही जीव दुख से मुक्त हो सकते हैं। स्वयं कौन है इस संबंध में जगत के जीवों की भारी भूल चली आ रही है। बहुत से जीव शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, इसलिए वे शरीर की रक्षा करने के लिए निरंतर अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। तो ये श्रद्धा जो है ना वह भी निरंतर परिणत हो रही है, अभी यहां तो उल्टी दिशा में जा रही है लेकिन वो भी चल रहा है। जबकि जीव शरीर को अपना मानता है तब जिसे वह समझता है कि यह शारीरिक सुविधा चेतन या जड़ पदार्थों की ओर से मिलती है, उनकी ओर उसे राग होता ही है। यानी जो अनुकूल लगते हैं ऐसे जो चेतन अचेतन दोनों पदार्थ उसके प्रति उसे राग हुए बिना रहता नहीं। और जिसे वह समझता है कि असुविधा चेतन या जड़ पदार्थों की ओर से मिलती है उनकी ओर उसे द्वेष भी होता है। यानी ये समझने की बात है, वो ऐसा मान रहा है कि पर पदार्थ होते मुझे असुविधा हो रही है तो उसके प्रति द्वेष, और इस प्रकार की धारणा से जीव को आकुलता बनी रहती है। जीव की इस महान भूल को शास्त्र में मिथ्या दर्शन कहा गया है। जहाँ मिथ्या मान्यता होती है वहाँ ज्ञान और चारित्र भी मिथ्या ही होता है। इसलिए मिथ्या दर्शन रूपी भूल को महापाप भी कहा जाता है। मिथ्या दर्शन भारी भूल है और वह सर्व दुखों की महान बलवती जड़ है। जड़ यानी रूट कॉज। क्या कहा आपने? हाँ मूल। तो फिर मूल यानी क्या? इसलिए जो रूट बता दे, ये छोटा बच्चा रहता है ना उसको भी मराठी में मूल कहते हैं। मुलगा नहीं, मूल। ये माझा मूल है, एक ही शब्द के। हाँ हाँ वो रूट को। अब देखो क्या कहते हैं, मिथ्या दर्शन भारी भूल है और वह सर्व दुखों की महान बलवती जड़ है। जीवों को ऐसा लक्ष्य न होने से वह लक्ष्य कराने के लिए और वह भूल दूर करके जीव अविनाशी सुख की ओर पैर रखे, इस हेतु से आचार्य देव ने इस शास्त्र में सबसे पहला शब्द सम्यक दर्शन प्रयुक्त किया है, प्रयुक्त यानी यूटिलाइज किया है, आयोजित किया है, प्रयुक्त यानी अच्छी तरह से उसका संजोया है। सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही उसी समय ज्ञान सच्चा हो जाता है, इसलिए दूसरा शब्द सम्यक ज्ञान प्रयुक्त किया है। और सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है, इसलिए सम्यक चारित्र शब्द को तीसरे स्थान पर रखा है। इस प्रकार तीन शब्दों का प्रयोग करने से कहीं लोग यह न मान बैठे कि सच्चा सुख प्राप्त करने के तीन मार्ग हैं, ऐसे लोग भूल न करें, इसलिए प्रथम सूत्र में ही बता दिया है तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। यदि जीव को सच्चा सुख चाहिए है तो पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना ही चाहिए। जगत में कौन कौन से पदार्थ हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, जीव क्या है, वह क्यों दुखी होता है, इसकी यथार्थ समझ हो तब ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसलिए आचार्य देव ने 10 अध्यायों में 7 तत्वों के द्वारा वस्तु स्वरूप बतलाया है। अब इसके आगे की बात हम कल
नंबर भी डाले हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर का।
हाँ जी,
उसमें नंबर डाले हैं कि नंबर नहीं डाले?
हाँ है ना, डाले।
कौन से नंबर की बात है? अभी छठा पॉइंट पढ़ रहा हूँ। अच्छा, वो पढ़ना चाहिए आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, कल से पढ़ेंगे।
Thank you.